एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं लिज मूर के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास द गॉड ऑफ द वुड्स के बारे में।
जी, लिज मूर मतलब समकालीन अमेरिकी साहित्य में उनका एक खास मुकाम है।
हाँ बिल्कुल, उनकी लेखनी में ना मानवीय रिश्तों की जो परतें हैं और समाज के जो अनदेखे से कोने हैं वो उनको बहुत संजीदगी से उकेरती हैं।
और खास बात यह है कि वो गहरी साहित्यिक बात को भी रहस्य और रोमांच के साथ बुन देती हैं, पढ़ने वाला बन जाता है।
सही कहा, जैसे उनका पिछला उपन्यास था लॉन्ग ब्राइट रिवर, याद है?
हाँ हाँ बिल्कुल, फिलाडेल्फिया में वो ओपियोइड संकट और दो बहनों की कहानी झकझोर देती थी अंदर तक।
वही मोर किरदारों के मन में क्या चल रहा है और उनके आसपास का माहौल कैसा है, इसे पकड़ने में माहिर है।
तो द गॉड ऑफ द वुड्स, जो मेरे ख्याल से 2023 के आखिर या 24 की शुरुआत में आया, ये भी उसी तरह का है।
हाँ, उसी कड़ी में है लेकिन अपनी एक अलग पहचान के साथ। ये सिर्फ एक बच्चे के गुम होने की कहानी नहीं है, ये एक पूरे परिवार की कहानी है जो कई दशकों तक चलती है, एक त्रासदी की कहानी।
अच्छा,
और ये हमें ले जाती है 1975 की गर्मियों में। जगह है एडिरोंडैक पर्वत के जंगल, विशाल खूबसूरत लेकिन उनमें कुछ खौफनाक सा भी है।
तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। पात्र, उनके जज्बात और उपन्यास क्या कहना चाहता है इस सब पर।
बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं 1975 की उन गर्मियों से, एडिरोंडैक जंगल।
हाँ, तो कल्पना कीजिए, कैंप सो एंड सो, लड़कों का एक समर कैंप है जंगल के बीच में, बिल्कुल देहाती सा माहौल। हमा में वो जवानी की मस्ती, आजादी, कुछ नया सीखने का जोश, वो सब कुछ है।
और यहीं हमारे मुख्य किरदार आते हैं।
हाँ, बारबरा केली, 14 साल की, वो कैंप में जूनियर स्टाफ में है।
और इसकी जिम्मेदारी है अपने छोटे भाई 11 साल के डेनिस केली का ख्याल रखना।
अच्छा, भाई बहन
डेनिस कैसा बच्चा है?
डेनिस थोड़ा कल्पनाओं में खोया रहने वाला, नाजुक सा, प्रकृति, जंगल, पुरानी कथाएं, इन सब में उसकी बहुत दिलचस्पी है।
और बारबरा बड़ी बहन वाली भूमिका में होगी, प्रोटेक्टिव।
बिल्कुल, दोनों में एक गहरा रिश्ता है और उस उम्र की बातें भी हैं। बारबरा का पहला क्रश है टॉमी चीपर, एक सीनियर काउंसलर। कैंप फायर है, गाने हैं, दोस्तों के साथ छोटी मोटी शरारतें, सब कुछ बहुत सामान्य सा लगता है।
लेकिन वो जंगल, आपने कहा खूबसूरत भी और खौफनाक भी।
हाँ, वही, वो जंगल सिर्फ पीछे का पर्दा नहीं है, वो जैसे बच्चों के लिए एक जादुई खेल का मैदान भी है और साथ ही एक बहुत बड़ी अनदेखी शक्ति का प्रतीक भी। उदासीन, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है।
और यही लिज मूर की खासियत दिखती है ना, वो त्रासदी से पहले की जो सामान्य जिंदगी है उसे इतने ध्यान से बनाती हैं कि जब कुछ होता है
तो उसका असर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, जंगल खुद एक किरदार बन जाता है, पनाह भी देता है और खतरा भी बन सकता है। मूर इसी टेंशन को बुनती है शुरू से।
जो आगे होने वाली घटना का इशारा देता है।
हाँ, और फिर वो पल आता है जो सब बदल देता है। कैंप की कोई रोज की गतिविधि चल रही है, छोटा डेनिस अपनी बहन बारबरा का ध्यान चाहता है, कुछ कहना या दिखाना है, लेकिन बारबरा उस वक्त टॉमी चिपर से बात कर रही है, अपने क्रश से।
अच्छा,
तो थोड़ी झुंझुलाहट में, शायद थोड़ी शर्मिंदगी में, उस कच्ची उम्र के तीखेपन में बारबरा कह देती है, जाओ यहां से, खो जाओ कहीं, मतलब गेट लॉस्ट।
ओह, कितना कितना आम सा वाक्य है ये, हम सबने कभी ना कभी कहा या सुना होगा।
बिल्कुल।
लेकिन यहाँ ये शब्द एक श्राप बन जाते हैं।
कैसे?
डेनिस, जो पहले से ही संवेदनशील है, शायद कल्पनाशील ज्यादा है, वो इन शब्दों को पता नहीं कैसे लेता है। गुस्से में या सच मानकर वो जंगल की तरफ चला जाता है।
और फिर?
रात के खाने पर वो नहीं आता। शुरू में तो किसी को ज्यादा चिंता नहीं होती, सब सोचते हैं यहीं कहीं होगा, बच्चा है।
हाँ, बच्चे खो भी जाते हैं कैंप में थोड़ी देर के लिए, लेकिन वक्त बीतता जाता है, चिंता बढ़ती है और फिर वो दहशत में बदल जाती है, डेनिस नहीं मिलता।
और बारबरा, उसके ऊपर क्या बीतती होगी वो कहे हुए शब्द।
वो शब्द एक पहाड़ बन जाते हैं, उसे लगता है सब उसकी वजह से हुआ, मैंने कहा और वो खो गया। ये अपराध बोध, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है हमेशा के लिए।
उफ,
कैंप का माहौल, वो हंसी खुशी, वो आजादी, सब खत्म। डर, शक, अनिश्चितता, वो गर्मी की दोपहर एक काली रात बन जाती है।
और यहीं से फिर कहानी का रुख बदलता होगा, पुलिस आती होगी, जांच शुरू होती होगी।
हाँ बिल्कुल, बड़े पैमाने पर खोज शुरू होती है, जंगल छान मारा जाता है, हर किसी से पूछताछ होती है, काउंसलर, कैंपर, स्टाफ।
जाहिर है शक की सुई बारबरा और टॉमी पर भी आती होगी, क्योंकि वो आखिरी बार डेनिस के पास थे।
बिल्कुल, खासकर बारबरा पर, और टॉमी भी, क्योंकि वो उस वक्त बारबरा के साथ था। पुलिस का दबाव, फिर मीडिया का, वो सब शुरू हो जाता है।
और बारबरा का वो जो पहला क्रश था टॉमी के लिए, वो भी सवालों के घेरे में आ गया होगा।
हाँ, वो मासूम सी बात भी शक की नजर से देखी जाने लगती है। उस पहली मोहब्बत की याद में भी जैसे कड़वाहट घुल जाती है।
और ये शक सिर्फ पुलिस तक नहीं रहता होगा, है ना, कैंप के अंदर भी।
सही कहा, वो जो एक समुदाय था, एक परिवार जैसा, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। लोग कानाफूसी करने लगते हैं, अफवाहें उड़ने लगती हैं, हर कोई अपनी थ्योरी बनाने लगता है।
किस किस पे शक जाता है?
कैंप का ग्राउंड कीपर है, आसपास के कुछ लोग हैं, टॉमी है ही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता किसी के खिलाफ। ऐसा लगता है जैसे जैसे जंगल ने ही उसे निगल लिया है, वही असली मुजरिम है, विशाल, खामोश, कोई राज न बताने वाला।
ये वो मासूमियत का खो जाना है जिसका जिक्र अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। एक घटना कैसे ना सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को बदल देती है, विश्वास टूट जाता है।
बिल्कुल, और जब कोई जवाब नहीं मिलता ना, तो इंसान का मन खुद जवाब गढ़ने लगता है, शक और डर के साये में। प्रकृति की वो उदासीनता और भी चुभने लगती है।
और केली परिवार, उनके लिए तो एक कभी ना खत्म होने वाली त्रासदी बन गई होगी।
हाँ, डेनिस की गैर मौजूदगी है, वो घर में एक भूत की तरह बस जाती है, वो घर का अनुपस्थित केंद्र बन जाता है, एक खालीपन जिसके इर्द गिर्द बाकी सब की जिंदगी घूमती रहती है, दुख, गुस्सा, नाउमीदी।
लिजमूर यहाँ दुख के अलग अलग चेहरों को बहुत बारीकी से दिखाती हैं, खासकर माँ बाप के दुख को।
जी, पिता हैं जेराड केली, वो उम्मीद और इनकार के बीच फंसे रहते हैं, वो मानते ही नहीं कि डेनिस मर चुका है।
उसे ढूंढने का जुनून सवार हो जाता होगा उन पर।
हाँ, और वो जुनून उन्हें धीरे धीरे खत्म करने लगता है, वो शराब में डूब जाते हैं, निराशा में, दुनिया से कट जाते हैं। एक पिता की लाचारी जो वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ पाता, दिल टूट जाता है देखकर।
और माँ डाइन के लिए,
उनका दुख बिल्कुल अलग तरह का है, खामोश, दबा हुआ,
अंदर ही अंदर घुटती रहती होंगी।
बिल्कुल। बाहर से वो शांत दिखती हैं, मजबूत बनने की कोशिश करती हैं, खासकर बारबरा के सामने, लेकिन अंदर से वो खोखली हो चुकी हैं, और माँ बेटी के बीच एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, अनकही बातों की, अनकहे दुख की,
और दूर कर देता है।
हाँ, खासकर जब उस पर बात ना हो पाए, जब हर कोई अपने अपने खोल में बंद हो जाए, वो संवादहीनता, वो हाई को और गहरा करती है। यह उपन्यास इसी अस्पष्ट नुकसान, एम्बिगुअस लॉस के असर को दिखाता है, कैसे वो रिश्तों को बिखेर देता है।
और बारबरा, उस पर क्या असर होता है लंबे समय में?
उसकी जिंदगी जैसे वहीं ठहर जाती है 1975 में। उसका भावनात्मक विकास, जिसे कहते हैं अरेस्टेड डेवलपमेंट, वो रुक जाता है।
वो अपराध बोध उसे कभी नहीं छोड़ता,
कभी नहीं। वो जिंदगी भर इसी बोझ के साथ जीती है कि मेरे कहने पर भाई खो गया। ये उसकी पहचान बन जाती है, वो लड़की जिसका भाई गायब हो गया था। ये बोझ उसके रिश्तों पर, उसके करियर पर, सब पर असर डालता है।
और वो जानने की बेचैनी कि आखिर हुआ क्या था,
वो तो हमेशा रही होगी, हमेशा। वो सालों तक चुपके से पुलिस की फाइलें, नक्शे, पुरानी अखबार की कतरन, सब संभाल कर रखती है। ये ना जानना, ये अपने आप में एक सजा है, मन हजारों शक पालता है।
बाद में टॉमी चिपर से भी मिलती है वो।
हाँ, सालों बाद, और वो मुलाकात फिर से उन पुराने जख्मों को कुरेद देती है, याद दिलाती है कि क्या खोया था और कैसे उस एक पल ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। टॉमी की जिंदगी भी उस शक के साए ने बदल दी थी।
तो कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है, दशकों बाद।
हाँ, वक्त गुजर जाता है, जख्म शायद भरते नहीं, पर उन पर वक्त की धूल जम जाती है, और फिर कुछ होता है।
कोई बड़ा खुलासा, कोई गवाह?
नहीं, ऐसा कुछ नाटकीय नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजें, कोई भूली हुई याद, कोई अचानक हुई मुलाकात, कुछ ऐसा होता है जो बारबरा को अतीत की तरफ दोबारा देखने पर मजबूर करता है।
उसे लगता है कि शायद उसने कुछ नजरअंदाज कर दिया था।
हाँ, बिल्कुल, कोई ऐसी कड़ी जो तब समझ नहीं आई थी, और इसी उलझन में, इसी तलाश में, वो वापस एडिरोंडेक जाती है, उन्हीं जंगलों में।
तो ये एक तरह से अपनी ही यादों की जासूसी है।
बिल्कुल सही कहा, ये खोज बाहर कम अंदर ज्यादा है, मनोवैज्ञानिक यात्रा है, वो बिखरी हुई यादों को जोड़ने की कोशिश करती है।
और उसे एहसास होता है कि जवाब शायद पुलिस फाइलों में नहीं
बल्कि उसके भाई के स्वभाव में छुपा है। डेनिस कैसा था, उसे क्या पसंद था, उसे याद आता है डेनिस का उन कहानियों के लिए आकर्षण जंगल के किसी छुपे हुए शायद खतरनाक ठिकाने के बारे में उसकी बातें।
ये दिलचस्प मोड़ है। यहाँ मोर याददाश्त पर भी सवाल उठाती हैं कि हमारी यादें कितनी भरोसेमंद हैं।
हाँ, और कैसे वक्त के साथ वो बदलती हैं, कैसे हम अतीत को अपनी तरह से याद रखते हैं।
और सच तक पहुँचने के लिए सिर्फ सबूत नहीं बल्कि कल्पना, सहानुभूति इनकी भी जरूरत पड़ती है। बारबरा को डेनिस की तरह सोचना पड़ता है।
बिल्कुल, और ये बहुत मुश्किल सफर है उसके लिए, भावनात्मक रूप से थका देने वाला। और इसके अंत में जो सच सामने आता है वो शायद हर कल्पना से ज्यादा दुखद है।
क्या पता चलता है आखिरकार?
तो पता चलता है कि डेनिस का अपहरण नहीं हुआ था, ना ही किसी ने उसे मारा था।
तो फिर
उस दिन जब बारबरा ने उसे झड़क दिया था, तो डेनिस शायद गुस्से में या बहन को चिढ़ाने के लिए जंगल में अपने खोजे हुए किसी गुप्त खतरनाक ठिकाने पर चला गया था।
ओह,
कोई पुरानी खदान, कोई गुफा या चट्टानों के बीच कोई ऐसी जगह जहां जाना सही नहीं था, और वहां अकेले उसके साथ एक हादसा हो गया।
मतलब
कोई विलन नहीं, कोई साजिश नहीं,
नहीं
कुछ नहीं, बस एक बच्ची की गलती और किस्मत का खेल, प्रकृति की वो उदासीनता।
उसे सबूत कैसे मिलता है?
उसे उस जगह पर डेनिस जीवड़ी कोई चीज मिलती है, कपड़े का टुकड़ा या कोई खिलौना, कुछ ऐसा जो साबित कर देता है कि डेनिस वहीं था और वहीं उसका अंत हुआ।
इस सच्चाई में एक अजीब सी क्रूरता है कि कोई वजह नहीं थी, कोई दुश्मन नहीं था।
हाँ, शायद यही सबसे तकलीफ दे है, वो बेमतलब होना, बस एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा।
इस सच का बारबरा पर क्या असर होता होगा? क्या उसे कोई शांति मिलती है?
शांति कहना मुश्किल है, बल्कि एक नए तरह का दर्द शुरू होता है, ये जानना कि भाई अकेले मरा, डरा हुआ, शायद मदद मांगता हुआ, ये ख्याल ही भयानक है।
लेकिन एक स्पष्टता तो आती होगी।
हाँ, वो आती है। जिन लोगों पर शक था, खासकर टॉमी, उन पर से वो साया हट जाता है।
और खुद बारबरा के लिए वो अपराध बोध,
उसके लिए ये समझना कि हाँ, उसके शब्द डेनिस के वहां जाने का कारण बने, लेकिन मौत का कारण एक हादसा था। ये एक बहुत बारीक सा फर्क है, पर शायद जरूरी है। ये उससे खुद को माफ करने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है, जो बहुत मुश्किल है।
ये उपन्यास अपराध बोध और माफी की जटिलताओं को छूता है
बहुत गहराई से। और परिवार के लिए, उनके लिए क्या बदलता है?
शायद दुख कम नहीं होता, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। डेनिस अब एक अनसुलझा सवाल नहीं रहता।
हाँ, एक दर्दनाक जवाब मिल जाता है।
अब वो उसे वैसे याद कर सकते हैं जैसा वो था और जैसे वो गया। वो अंतहीन शक और सवालों का चक्कर खत्म होता है, जो एक दर्दनाक पूर्ण विराम है प्रश्न चिन्ह की जगह। शायद अब वो एक साथ शोक मना सकते हैं, एक साझा सच के साथ।
तो अगर हम इस उपन्यास के मुख्य विषयों को देखें, तो अनसुलझा दुख है, परिवार का बिखरना है,
प्रकृति का वो दोहरा रूप है, सुंदर भी खतरनाक भी,
स्मृति और सच का रिश्ता है, कैसे यादें बदलती हैं,
मासूमियत का खो जाना है और आघात का लंबा असर। ये सब बहुत मजबूती से आते हैं।
और बारबरा की वो लंबी खोज, सच जानने की जिद, वो एक तरह से इंसानी जुझारूपन भी दिखाती है ना, कि इतनी मुश्किल के बाद भी वो लगी रहती है।
हाँ बिल्कुल, लिज मूर किरदारों की कमजोरी के साथ उनकी ताकत भी दिखाती है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शब्दों में कितना वजन होता है, गुस्से में कहे गए शब्द भी।
और ये भी कि कभी कभी सच जानना, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, अनिश्चितता में जीने से बेहतर हो सकता है या शायद नहीं।
हाँ, ये सवाल तो रहता ही है, क्या सच हमेशा राहत देता है या कभी कभी वो और ज्यादा तोड़ देता है। ये पाठक सोचने पर मजबूर होता है। अतीत का सामना करना शायद यही आगे बढ़ने का रास्ता है।
बिल्कुल, अपराध बोध, जिम्मेदारी, माफी, इन सब पर ये गहरा चिंतन है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।